لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتظامیہ یا والنٹیئرز میں سے اگر کوئی ہے تو اس کے لیے یہ اعلان کہ یہ پنکھا صرف مجھے ہوا نہیں دے رہا، باقی سب کو ہوا دے رہا. قرآن کریم کی دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. ایک آیت پورے عشرے کا سرنامہ کلام قرار پائے گی، اور دوسری آیت روزانہ کی مجلس کے عنوان کے تحت تلاوت کی جائے گی. چونکہ برادر محترم اعجاز صاحب کی اپنی تقریر بہت لمبی ہو گئی، تو مجھے کوئی اس وقت موقع نہیں مل رہا کہ میں آپ کو یہ تفصیلات بتاؤں جو ہر سال بتاتا تو ہوں کہ کتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہ آنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اب تو بڑھاپا ہے، بہت زیادہ خستگی یا تھکن ہوتی ہے، لیکن اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. دوسرا جو معروضہ میں اکثر پہلی مجلس میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایام عزا کی یہ مجلس سفر حج کے فوراً بعد ہوتی ہے. حج کا سفر یقیناً اب بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن جیسے جیسے دنیاوی سہولتیں بڑھ رہی ویسے ویسے موسم کی سختیاں بھی بڑھ رہی ہیں، جس کا اثر پڑھنے والے پر یقیناً ہوتا. سفر حج کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، ظاہری بات کر رہا ہوں. پہلی نشانی تو آپ کو اس لیے مجھ میں نہیں ملے گی کہ فقہی مسئلہ آپ تقریباً ہر ایک کو معلوم ہے، وہ پہلی نشانی یہ ہے کہ حج سے آنے والے مرد حضرات، کیا لفظ استعمال کروں، ان کا سر منڈا ہوا ہوتا ہے، سر شیو ہوتا ہے، یا یہ کہ بہت سلینگ لینگویج میں وہ گنجے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ یہ مسئلہ پہلا حج کرنے والے کے لیے واجب ہے، اور جو ایک دفعہ حج کر چکا ہو اس کے بعد ثواب تو ہے لیکن واجب نہیں. دوسری پہچان جو وہاں کے مخصوص حالات میں فلو اور کھانسی اور اس قسم کے مسئلے، اس کا آپ کو ابتدائی دو تین مجالس میں میرے حوالے سے سامنا کرنا پڑے گا. لیکن قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی ہے، ایک اعتبار سے ان کا تھوڑا سا ربط اس سفر حج سے بھی بن رہا. پہلی آیت جو میں نے عرض کیا کہ پورے 10 دن تلاوت کی جائے گی، یہ سورہ حج کی آیت، جس میں بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے احکامات اور واجبات حج بیان کیے. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کی اتنی تفصیل قرآن میں آئی ہو جتنی حج کی آئی. نماز جیسی اہم عبادت، اور پھر روزہ اور زکوٰۃ اور دیگر جتنے بھی واجبات، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو بیان ہے وہ حج کا. بلکہ سوائے شیطانوں کو کنکر مارنے کے حج کا پورا طریقہ کار قرآن کریم میں آ چکا. تو اس میں خاص طور پر یہ سورہ حج کی آیتیں، جس کے اندر خالی حج کا حکم نہیں آیا، حج کے احکامات یا حج کے مسئلے نہیں آئے، بلکہ حج کی تاریخ بھی آئی کہ کیسے ابراہیم نے کعبہ بنایا، اور جب کعبہ مکمل ہوا تو کیسے ابراہیم کو حکم دیا، واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، तो तारीख हज, तारीख काबा और फिर हज के सारे वाजिबात। तो आयत जो मैंने तिलावत की वो भी उसी सूरह हज की आयत। तो हज की आयत से मजलिस शुरू हो रही है। और दूसरी आयत जो मैंने तिलावत की, किसी भी हाजी से पूछ लीजिए कि उसका हज इख्तिताम पर जब पहुंचता तो कौन सा वाजिब है जिससे हज मुकम्मल होता है, तवाफुन निसा। तवाफुन निसा पे जाके हज मुकम्मल होता है। दूसरी आयत सूरह निसा की आयत। और इन दो आयतों की तिलावत करके ये सुनवान पे गुफ्तगू करना है। हर साल कुछ ना कुछ दुनिया के हालात में ऐसी तब्दीली आती कि बावजूद ये कि मेरी ख्वाहिश ये होती कि अब इस सुनवान पे फिलहाल गुफ्तगू ना करूं, लेकिन वो हालात में कुछ ऐसी तब्दीली होती है कि घूम फिर के मुझे इस सुनवान पे आना पड़ता है, यानी हुकूमत इमाम। और इस लफ्ज इमाम को बदल दूं हुकूमत मासूम, ताकि अल्लाह का रसूल, सीरत रसूल का बहुत अहम हिस्सा भी इसी उनवान के तहत आ जाए। अब ये हुकूमत इमाम का उनवान आप समझें कि हुकूमत मासूम का, ये याद दिला दिया जाए कि करबला के 61 हिजरी के जिहाद से लेकर जहूर इमाम जमाना तक ये उनवान, यानी करबला में आका हुसैन का जिहाद एक एतबार से हुकूमत इमाम का पहला कदम था। अगरचे उससे पहले के मासूमीन भी हुकूमत इमाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत कायम हुई, मौला की भी हुकूमत कायम हुई, आका हसन 6 महीने सही हुकूमत कायम। तो जिस हुकूमत इमाम का तस्वुर हमारे और आपके जहन में आगाज हुआ करबला से और आज ये शब पहली मुहर्रम की मजलिस है, और इसका इख्तिताम या तकमील होगी जमाने के इमाम की हुकूमत पर। लेकिन आज की मजलिस में सिर्फ 2 या 3 तमहीदी बातें ही बयान हो सकेंगी। आइए अब एक मरतबा पहली आयत की तिलावत कर दी जाए जो ये बता रही है कि हुकूमत मासूम कैसी होती। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, वो लोग जिन्हें हम जमीन में, हम मक्कन्ना, हम ना की जमीर इस्तेमाल हुई, वी, वो लोग जिन्हें हम जमीन पे हुकूमत देते हैं। वैसे तो इस दुनिया में हुकूमत हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आलम इस्लाम, पैगंबर इस्लाम के दुनिया से जाते ही एक उसूल बना के बैठ गया कि 3 या 4 तरीकों से हुकूमत अगर कायम हो तो वो वैलिड हुकूमत। नंबर 1 इजमा, पहली हुकूमत। नंबर 2 वसीयत, दूसरी हुकूमत। नंबर 3 शूरा, तीसरी हुकूमत। नंबर 4 गलबा, मुआविया की हुकूमत। गर्ज़ी है कि इस बहस पे मुझे नहीं पढ़ना। और इसके अलावा ये तो है आलम इस्लाम की तारीख के इजमा के जरिए से, या वसीयत के जरिए से, या शूरा के जरिए से, या ये कि ताकत के जरिए से, जिस तरह हुकूमत सारी वैलिड। और आखिरी चीज को तो इतना अहम करार दिया गया है कि एक हदीस बना ली गई है कि अगर कोई नकता गुलाम भी तलवार के जरिए से हुकूमत कायम कर ले तो खबरदार उसके खिलाफ भी तुम्हें कुछ नहीं बोलना। खैर, अब ये सारे मौजूआत न सिर्फ ये कि मेरे मौजूआत नहीं बल्कि आज की मजलिस में इसकी गुंजाइश भी नहीं, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में मुख्तलिफ कौमों में, मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत हासिल करने के और बहुत सारे तरीके राइज। मगर कुरान कहता है कि जिसे हम हुकूमत, जिसे अल्लाह हुकूमत दे रहा, उसका तरीका कार यह है कि अकामुस्सलात, बाशुरू नमाज से होगी। नऊज़ु बिल्लाह कितनी ही पुरानी इबादत लगे, नऊज़ु बिल्लाह कितनी ही आउटडेटेड इबादत लगे, नऊज़ु बिल्लाह नकल कुफर, कुफर नबाशत। बहरहाल जो नमाज के हवाले से हमारे यहाँ जोक और लतीफे मशहूर होते चले जा रहे हैं, कुरान कहता है कि पहली बुनियाद, पहली ईंट, पहला आगाज अकामुस्सलात व आतबुज़्ज़कात, और वह ज़कात को अदा करेंगे। और फिर वह अमरु बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, नेकियां फैलाएंगे, बुराइयों से रोकेंगे, वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। तो बहुत ही वाज़े अंदाज में कुरान ने कह दिया कि हुकूमत मासूम या हुकूमत इलाही, जो हुकूमत अल्लाह देता और मासूम को अता करता, उसके अंदर आदमी को फ्रीडम नहीं। कौन सी फ्रीडम? फ्रीडम है, मौला का मशहूर जुमला, जिन्हें उनकी माओ ने आजाद पैदा किया है, तुम कौन होते हो उनको गुलाम बनाने वाले? आजादी है मगर गुनाहों की आजादी नहीं। और आज की दुनिया में हुकूमत कहते ही उसे है कि जहां पे इंसान को गुनाहों की आजादी मिले। आजादी का मतलब ही आजकल यही, लेकिन वही बात कि आज की एक मजलिस में इतनी सारी बातें छेड़ना मुनासिब नहीं। कुरान करीम ने सूरह हज में बहुत वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया कि मासूम की हुकूमत की बुनियाद चार चीजें, वामरु बिल मारूफ नहौन इल मुनकर, नेकियों का फैलाना और बुराइयों से लोगों को रोकना। और फिर यहां पे एक इशारा कर दूं, इसलिए कि इशारे से ज्यादा बयान करने का आज मौका नहीं, कि अब अगर कोई सवाल ये करे कि इमाम तो ये हुकूमत करें कायम करेंगे, अवाम इस हुकूमत को कैसे बर्दाश्त करेंगे? मासूम ने तो ये हुकूमत कायम कर दी जिसमें ये चार चीजें हैं, लेकिन ये हुकूमत जो है ये किसी जंगल में किसी वीराने में, या हुकूमत सुलेमान नबी की तरह से हवाओं पर या पानियों पर तो नहीं है, तो इंसानों पर। इस हुकूमत को इंसान कैसे कबूल करेंगे, हुकूमत को इंसान कैसे बर्दाश्त करेंगे? बहुत ही मुख्तसर मैं बात कह रहा हूं कि खाली इशारा, क्योंकि अभी अभी डेढ़ महीने इसकी तफसील बयान करके आ रहा हूं मक्के और मदीने। इशारा यही है कि आयत कुरान करीम ने रखी है सूरह हज, और यह सूरह हज खाली नाम की हद तक सूरह हज नहीं, सूरह वाल असर। सिर्फ एक लफ्ज अल असर सूरह में आया तो सूरह का नाम सिर्फ एक लफ्ज की वजह से बढ़ गया, लेकिन अल हज में खाली एक लफ्ज नहीं आया, आयतों पर आयतों पर आयतों पर आयतों पर आयतें हैं हज की। वाकई सही मानों में सूरह हज में हज का तस्किरा, और उसमें ये आयत आके इशारा किया कि ऐसा बनने के लिए कि हुकूमत मासूम आदमी कबूल करे, तैयार हो जाए, राजी हो जाए, उसके लिए उसको हज की तरह की ट्रेनिंग लेना पड़ती है। अब वो फिर बात का मरहला है कि वो क्या ट्रेनिंग होती है, उसकी क्या नतायज होते हैं। तो ये तो कुरान करीम ने बता दिया कि अल्लाह जिन्हें हुकूमत देता वो तरीका कार क्या। और बहुत ही मुख्तसर जो जुमला भी मैंने अर्ज किया था इसको उससे मिला लीजिए, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं बयान करूं सारा का सारा मजमा जिंदगी भर मजालिस सुनने वाला। आका हुसैन के करबला के लश्कर का सिलेक्शन आप देख लीजिए, यही चार बातें उसमें नजर आएंगी। इसी की बुनियाद पर आका हुसैन हुकूमत मासूम या हुकूमत इमाम का पहला कदम उठा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आका ताज व तख्त लेने गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करबला के जिहाद का मकसद अपना इख्तदार कायम करना, वो पहला कदम था। आखिरी कदम जो है यानी तकमील, वो तो जमाने का इमाम करेगा, लेकिन जो हुकूमत इमाम कायम होना है आप देख लीजिए कि आका हुसैन के लश्कर में यही चार बातें आपको नजर आएंगी, बाकी बयान बाद में। ये तो हुई वो आयत जिसको जहन में रखकर 1440 हिजरा के इस पहले अशरे की आने वाली 9 या 10 मजालिस में बयान होगा। लेकिन इसके हवाले से सबसे पहली जो कंडीशन है वो कुरान करीम ने सूरह निसा में बयान कर दी। पहली कंडीशन, पहली शर्त, वो पहली क्या चीज है जिसके बाद इंसान हुकूमत मासूम कबूल करने को तैयार होता? फला व रब्बिका ला युमिनून। और जब भी ये आयत की मैं तिलावत करता हूं लोग तो इस आयत के आखिरी लफ्ज को सुनकर मजा लेते हैं, क्योंकि आयत दुरूद में भी वही लफ्ज आया, फला व रब्बिका ला युमिनून आता यो के मुकफीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदु फी अन्फुसिहिम हरजा मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। आखिरी लफ्ज सुनकर लोग आयत दुरूद ज़हन में आ जाती, और मैं इस आयत के पहले लफ्ज का मजा लेता हूं। बहुत अहम पैगाम, और अक्सर ये जुमला मैं कह के आगे बढ़ता हूं। इस आयत को मैंने माहे मुबारक के सफर में यहीं के मिंबर पे कई बार पूरे पूरे अशरे का उन्वान बनाया कि न सिर्फ ये कि इस आयत का आगाज एक ऐसे ऐलान से हो रहा जो हम और आप अगर किसी के बारे में कहें तो इस्लाम ने उसको पसंदीदा करार नहीं दिया, और वो ये है कि जरा सी बात पे किसी से इख्तलाफ झगड़ा और आपने कह दिया कि मैं तो तुम्हें मोमिन ही नहीं मानता। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है जहां जाकर किसी के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो मोमिन नहीं। जब पैगंबर का वो मशहूर जुमला भी आपने सुना कि क्या तुमने उसके दिल को चीर के देखा था, क्योंकि ये वाकयात बहुत मशहूर है और बहुत ज्यादा लोग मुझ पर एतराज करते हैं कि बहुत पुरानी पुरानी चीजें आप रिपीट करते हैं, तो मैं खाली इशारे करके आगे बढ़ रहा हूं। क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था कि वो सच्चे दिल से इस्लाम लाया था कि नहीं खाली जान बचाने के लिए? बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन। हाँ, आखिर में एक मरहला आता जहां एक आदमी खुद अपना पर्दा नहीं रखता। वो तो पैगंबर की मशहूर हदीस अगरचे तिलावत की जाती है गीबत के लिए, जो आदमी अपनी हया का पर्दा खुद उलट दे तो अल्लाह फिर उसके लिए कोई पर्दा नहीं रखता। आता ये मौजू है गीबत में कि वो आदमी जो खुल्लम खुल्ला कोई गुनाह करता, आप उसके उस गुनाह का तस्किरा लोगों के सामने कर सकते क्योंकि उसने खुद ही कोई पर्दा नहीं रखा। लेकिन इसका ताल्लुक कुफर के फतवों से भी, क्या इतना खुलकर कोई आदमी ऐसी बात कह दे, और वो भी उसमें शर्त यह है कि मजाक में कर रहा हो। इसका मतलब यह नहीं है कि कुफरिया बातें मजाक में जायज, वो भी गुनाह है, लेकिन उसे काफिर नहीं बनाता। और गलत फहमी में मुब्तला ना हो, अगर कोई कुफरिया बात कह रहा है लेकिन किसी गलत फहमी की बुनियाद पर, बहुत सारी चीजें हैं, ये आज का मौजू नहीं, मैं गलत रास्ते पे चला गया, वापिस आता हूं। तो खुलासा ये कि हमें और आपको बड़ी सख्ती के साथ हुक्म दिया गया कि कभी किसी के अकीदे और ईमान के बारे में इतने आराम से ये बात ना कहना। अब यार रुक के एक बात अर्ज करूं, आजकल का माहौल, हमारी कौम दोनों एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी और इतना जज्बाती हो चुकी मामूली मामूली बातों पर, छोटी छोटी बातों पर, हत्ता जिसका दीन से कोई ताल्लुक भी नहीं है, मसलन तारीख के मसले, उसके ऊपर बड़े आराम से कह देते हैं ये आदमी काफिर है, इसको तो हम मानते ही नहीं मुसलमान, और ये तो बदतरीन काफिर। और क्या आजकल के बच्चों के हाथ में ये फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग की चीजें लग गई। खैर, बात का ये मौजू बनेगा, इतनी सी बात कि क्या करबला में जनाब कासिम की शादी हुई कि नहीं हुई, ये तारीख का मसला, ना उसूल दीन में शामिल है ना फुरू दीन। क्या हैदराबाद दक्कन से मेरे खिलाफ कुफर का फतवा सिर्फ इस बात पे नहीं आया था कि मैंने इतना जुमला कह दिया था इसी टोरंटो में, इसमें उलमा के दो गुरोह हैं और ज्यादा जो हमारे मुहक्किक उलमा वो कहते हैं कि तारीखी एतबार से शादी साबित नहीं, कुफर का फतवा सीधा सीधा, बीच में कहीं स्टॉप लेके या कोई और बात नहीं, सीधे सीधे तो आदमी काफिर हो गया। खैर, मैंने तो यहां तक सुना कि मासूम की शहादत की तारीख में किसी ने इख्तलाफ किया कि ये जो डेट आप मना रहे हैं ये नहीं है, वो इस पर कुफर का फतवा लग गया। खैर, अब ये एक ऐसा मौजू जो आज शायद टाइम से पहले मैंने छेड़ दिया, इसलिए कि आज जो लोग मजलिस में आए हैं ये वही लोग हैं जब मेरा बयान सुनने आए हैं। कल से तो इंशाल्लाह आका हुसैन के बहुत सारे मुहिब भी आएंगे, तो ये इस मजमे के लिए ये मौजू नहीं। लेकिन बात कहां से चली थी कि हम और आप इतने आराम से, अच्छा, और ये भी एक बहुत अजीब बात, इमाम की एक हदीस है जो पूरा अशरा न सही तो पूरी एक मजलिस तो उस हदीस पे हो सकती, डरो उस मजलूम से कि जब वो साहिब ताकत हो जाएगा, वो पुराने जालिम से कई गुना ज्यादा बड़ा जालिम साबित होगा, जो आज बड़ा, जो आज हमें मजलूम नजर आ रहा, बहुत ही ज्यादा जर्नलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो हमें बहुत ज्यादा मजलूम नजर आ रहा, जब इसके पास उतनी ही ताकत आ जाए जितनी ताकत इस पर जुल्म करने वाले के पास, फिर देखना इसका अंदाज। बहुत ही इसको लाइट वे में लूं तो यह अर्ज कर दूं, अब तो मेरी उम्र भी ऐसी कि मैं ये कह सकता हूं कि सारी बातें आंखों देखी कर रहा हूं। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जो इंतहाई, या अब ये इंडिया पाकिस्तान की बात है, कनाडा की बात नहीं, जो इंतहाई मजलूम बहू आती थी,
आती थी
हम लोगों के पास, तो लोग किस लिए आते हैं? दुआ, तावीज, धागा, कोई ऐसा जादू, इत्तेफाक से ये मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन बहरहाल बातें तो सुनना पड़ती। आज जब वही सास बनी, वही खातून, और उनकी बहू हमारे पास आती और वो जो स्टोरी सुनाती, तो बिल्कुल ये लगता है कि 25 साल पहले की फिल्म दोबारा रिवाइंड करके दिखाई जा रही। ये तो बहुत आम सी बात मैंने कही, लेकिन इख्तदार में आने के बाद भी बड़े बड़े खानदानों को आप देखेंगे, जब वो मजलूम थे और कितना तड़प रहे थे और अल्लाह से फरियाद कर रहे थे, और जब उनके हालात बदले तो उनकी क्या हालत हो गई। अब ये जो खानदानी एतबार से मैंने एक ऐसी बात कही जो आप हजरात हर घर में देखेंगे, सास बहू का मसल पैसे के एतबार से। आज गुर्बत की वजह से जिन्हें अपनी इज्जत बचाना मुश्किल, और वो ये सोचते हैं कि अल्लाह ने जिनको दिया उनको आखिर एहसास क्यों नहीं, जब इनके दिन फिरे और ये उस पोजीशन में पहुंचे तो ये उससे बुरे साबित हुए और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। मेरी मजलिस में ये बात आ कहां से गई? ये यहां से आई। जब हम पर बहैसियत मजमूई कोई कुफर का फतवा लगाता तो हम कितना तड़प जाते हैं, और हम सोचते हैं कि ये कितना बददियानत इंसान है, खायन इंसान है, जाहिल इंसान है। इतना एहसास नहीं कि आगे पहले हमसे पूछ तो ले। लेकिन जब हमारे हाथ में वही सोशल नेटवर्किंग की साइट आती है और फेसबुक आता है, जो कुछ भी है, व्हाट्सएप वगैरह, हम उनसे कम नहीं होते कुफर के फतवे लगाने में। वो बहसियत मजमूई हमें काफिर, काफिर शिया, काफिर करार दिया गया। और जब हमारे पास ये चीजें आती हैं तो हम सारे मराजे, सारे मुश्तहदीन, सारा हौज़ा इल्मिया सबको एक ही सांस में काफिर कह देते। आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं तो इन चीजों का अब तक आदि नहीं बन सका। एक तो उम्र की वजह से, दूसरा शरीयत की वजह से। गीबत करना भी आराम है तो गीबत देखना भी आराम है, तो गीबत सुनना भी, खैर छोड़े इसको। खुलासा ये कि हम और आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां अक्सरियत इंडिया और पाकिस्तान में जिंदगी गुजार के आए, जो यहीं के पैदा शुदा बच्चे हैं वो तो फरजदक मियां की मजलिस में बैठे होंगे और उनको वहां बैठना चाहिए। ये हमारी नई नस्ल है, ये खुतबा। अभी आपने इनके खानवादे का तारुफ सुना, तो आप हजरात खुद देख चुके हैं कि अपने मुल्क में किस मरहले से हम और आप गुजरे हैं कुफर के फतवों की वजह से। लेकिन आज मौका मिलता हम भी वही कर रहे हैं, और हम तो इतने काबिल एहतराम मुकद्दस उलमा और मराजे के बारे में आंखें बंद करके जो चीज हमें पसंद नहीं आई फतवा दे देते, लेकिन ये आज का मौजू नहीं, मौजू ना होने के बावजूद 10 मिनट पहले ले लिए। लेकिन जब कुरान और परवरदिगार कुरान करीम किसी के बारे में ये ऐलान करे कि मैं इसके ईमान को नहीं मानता हूं, अल्लाह का इतना कह देना ही कयामत है कयामत। और फिर अगर ये ऐलान करने से पहले अल्लाह कसम खा के ऐलान करे हम और आप कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे, और फिर उससे पहले अगर कसम मिला दे, तो मैं तो कसम शरी खा के ये बात कह रहा हूं, तो बात वजनी हो जाती। या परवरदिगार खाली इतना कह देता कि मैं मोमिन नहीं मानता हूं, यही काफी था। इस तरह नहीं कहा, फला व रब्बे, तेरे रब की कसम, ला यूमिनून, ये मोमिन नहीं। ये हुकूमतें इमाम जमाना, हुकूमतें आका हुसैन, हुकूमतें इमाम अली, हुकूमत रसूल खुदा, सबका ये पहला कानून, फला व रब्बिका ला युमिनून, तेरे रब की कसम ये मोमिन हो ही नहीं सकते। देखिए इसमें भी फर्क है, एक तो ये कहा जाए कि ये आदमी मोमिन नहीं, और एक कहा जाए ये हो भी नहीं सकता। फ्यूचर मुस्तकबिल का दरवाजा भी अल्लाह ने बंद कर दिया, फला व रब्बिका ला युमिनून। अब मैं आयत का तर्जुमा पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, जो मेरी मजालिस बहुत सुनते हैं वो जरा सी उकताहट महसूस करने लगे। तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं जब तक कि ये तेरे हर हुक्म के सामने आंखें बंद करके सर झुकाना ना सीखे। आंखें बंद करके, ये मैंने तर्जमा आंखें बंद करके कैसे कहा, सुम्मा ला यजदू फी अनफुसहिम हरजा। तेरा हुक्म आ जाए, एक तो होता है कि आप हुक्म मान लेते, बाप माँ बहुत सारे अहकाम देते कि आप एग्री नहीं, लेकिन बहरहाल उनका एहतराम इज्जत आपने उनकी बात मान ली, मगर दिल के अंदर यही ख्याल है कि हुक्म तो उन्होंने गलत दिया। अब फिर वही सास बहू की बात नहीं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन माँ के इताअत गुजार कई बेटे ऐसे हैं जो इसलिए बीवी का हक अदा नहीं करते कि माँ मना कर रही है और वह दिल में समझ भी रहे कि इस वक्त तो मेरी माँ ज्यादती कर रही है, लेकिन बहरहाल माँ और बहुत नाराज भी है। तो दिल में तो ख्याल आ जाए, कुरान कहता है नहीं, ला यजदू फी अनफुसहिम, उनके दिल में भी जरा सा ख्याल ना आ जाए कि क्या हुक्म दे दिया, आंखें बंद करके मानना। ये पहली शर्त बताई, पहली शर्त कुरान करीम, ईमान की भी यही शर्त है, ला यूमिनून, ना आज ये मोमिन है ना आइंदा मोमिन हो सकता जब तक कि तेरे हुक्म के आगे फ्रीडम। और ये आयत कितना आपस में टकरा रही, हर चीज की हुदूद होती है, लेकिन इससे ज्यादा इस वक्त बयान करने का मौका नहीं। पहली शर्त आंखें बंद करके हुक्म को मानना। अब आइए आखिरी मासूम का एक वाकया सुन लीजिए, पहले मासूम का एक वाकया सुन लीजिए और बात जरा वाज़ेह हो जाए। वाकयात को मैं मुख्तसर कर रहा हूं ताकि जिन्होंने पहले सुने हुए, ये भी मेरे साथ एक बड़ा मसला, आते भी हैं मजालिस में और फिर बाद में कंप्लेन भी करते हैं। मैं तो पहले से ऐलान कर देता हूं कि बाद बातें नहीं, अक्सर बातें दोहराना पड़ती है। आखिरी मासूम, पहला मासूम, आखिरी मासूम का वाकया इस एतबार से बड़ा अजीब है, अजीब तो नहीं है मगर एक वाकये के अंदर दोनों पहलू जमा हो गए। जमाने के इमाम की गैबत शुरू हुई, दो स्टेजेस में गैबत थी, शुरू हुई पहले और दूसरे नायब जो इमाम ने मुकर्रर किए, वहां तो कोई मसला पेश नहीं आया, इसलिए कि जो पहले नायब थे ये दसवें इमाम के जमाने से नियाबत की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। मशहूर शख्सियत, हर आदमी इनकी दियानत और हर आदमी इनकी कुर्बत कि ये इमाम के कितना करीब है, इमाम से मतलब अइम्मा के कितना करीब, हर आदमी जानता। जानी पहचानी शख्सियत को कोई ओहदा देना बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल को हल कर देता है, न सिर्फ ये कि दसवें इमाम ने इनको अपना नायब बनाया था, बल्कि यह ख्याल करते हुए कि हुकूमत इस परेशानी में मुब्तला, अभी देखिए कितने सारे मोमिनीन और मोमिनात इराक की जियारत के लिए जाने को तैयार हैं, तो सामर्रा तो जरूर जाएंगे, कि दसवें इमाम को हमने सामर्रा में लाके कैद कर दिया हुकूमत, मगर निजाम चल रहा, तो आखिर ये निजाम कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है इमाम की गैर मौजूदगी में, ये सिस्टम किसके हाथ में, वो ढूंढ रहे हैं उस आदमी को कि दसवें इमाम कैद में है, वही जो सरदाब, और आज तो रोजा इतना बड़ा हो गया कि घर तो घर वो पुराना पूरा महल्ला है अस्कर, जिसकी वजह से दसवें इमाम भी अस्करी कहलाते हैं और ग्यारहवें इमाम भी अस्करी कहलाते हैं, वो पूरा महल्ला रोजे के अंदर आ गया, मगर दसवें इमाम का खास घर चारों तरफ से इमाम मुहासरे में है, पहरे में है और निजाम चल रहा। अजब, ये जालिम हुक्मरान जो इतनी बड़ी हुकूमत को संभाले हुए, बेवकूफ नहीं, बुद्धू नहीं है, अहमक नहीं है, उनको मालूम है कि निजाम चल रहा, तो वह तलाश में, मगर इस तरह से उस नायब इमाम ने इमाम के इंस्ट्रक्शन के ऊपर निजाम इमामत को चलाया है कि हुकूमत वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। उस्मान इब्ने सईद अहवाजी, और ये आपने मजलिसों में बहुत सुना तो एक इशारा काफी कि उन्होंने बगदाद के मेन बाजार में रोगन और तेल और घी वगैरह बेचने की बहुत बड़ी दुकान खोली, और उसी के अंदर मोमिनीन कराम कस्टमर बन के आते हैं और वो सारे मसाले हल हो जाते हैं, तफसील का न मौका है न जरूरत। अब आदमी जाने पहचाने आदमी, और जिस तरह से निजाम इमामत को चला रहे हैं, हर आदमी इनको पहचानता। चुनाच दसवें की शहादत हुई, ग्यारहवें ने इनको एज इट इज बाकी रखा। इनकी दुकान और इनकी शोहरत मोमिनीन के दरमियान थी। ग्यारहवें की शहादत हुई, बारहवें ने इनको इसी तरह बाकी रखा। अब एक तसलसल चल रहा है, इसलिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हो पाया कि कौन आदमी है, कहां से आया, इसको नायब माने के ना माने। आजकल तो मर्जियत के हवाले से लोगों के जहन में गलत फहमी आ रही है। और जब इनका आखिरी वक्त करीब आया, बहुत बूढ़े हो गए, तो इनका अपना बेटा मोहम्मद इब्ने उस्मान इब्ने सईद, जो इस पूरे अरसे में अपने बाप के साथ उसी दुकान में बैठता और अपने बाप के साथ उसको नायब रखा गया, वो भी जानी पहचानी शख्सियत बन गया। लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया मोहम्मद इब्ने उस्मान का, अब किसी नए आदमी को नायब बनाना है, वक्त भी इतना गुजर गया कि दसवें इमाम और ग्यारहवें इमाम के सहाबी तकरीबन दुनिया से जा चुके। साहिबान ईमान के दरमियान उस वक्त तीन उलमा की शोहरत बहुत ज्यादा। मैं बहुत मुख्तसर बात कर रहा हूं, वरना मर्जियत के हवाले से बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जहां इससे मिलते जुलते वाकयात पेश आए। यानी एक बहुत बड़ा मर्जी, उसकी जिंदगी में ही एक दूसरे बहुत बड़े आलिम की इतनी शोहरत हो जाती है कि ये नेक्स्ट फ्यूचर मर्जी होगा। और पता चला कि जब पहले जिंदा मर्जी का इंतकाल हुआ, कहीं से अजगैबी वाकयात भी हैं, अजगैबी की तशरीह है, इमाम जमाना के वाकयात, किसी और शख्सियत का नाम आ गया। लेकिन वो मर्जियत को अभी मैं हाथ नहीं लगाता, बहुत बड़ा मौजू। नायब, ये कौन से नायब हैं? ये खास वो नायब जिनका इमाम से कांटेक्ट होता। मोहम्मद इब्ने उस्मान इब्ने सईद बीमार, बूढ़े हो गए, बिस्तर अलालत पर। तीन आलिम उस वक्त बहुत मशहूर, अबू सालेह नौबख्ती और हुसैन इब्ने रौह और अबू जाफर शलगमानी, तीन बहुत मशहूर। इनमें सबसे लो प्रोफाइल पर हुसैन इब्ने रौह, बल्कि ये कहिए कि आम आदमी इनको जानते भी नहीं थे कौन है। और सबसे ज्यादा शोहरत अबू जाफर की थी, जो पाकिस्तान के मोमिनीन और खास तौर पर कराची के मोमिनीन। एक ऐसा वाकया आजकल पाकिस्तान और कराची में पेश आ रहा है, मैं इशारा नहीं करना चाहता, अपनी आज की मजलिस को शख्सियात और पर्सनालिटी की जानिब नहीं ले जाना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये जमाने के इमाम की इमामत के शुरू में हो चुका। तो अबू जाफर इतनी सर्विसेज दी थी उसने शियत को कि उस जमाने में उसके बराबर का दूर दूर कोई आलिम नहीं था। तबलीगात, उस वक्त किताब लिखना आज से 1200 साल पहले दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। प्रिंटिंग तो थी नहीं, हर किताब खुद हाथ से लिखी जाती थी, और इतनी किताबें कि हर घर में इसकी किताब पहुंच गई है शियत के लिए। मजहब का तहफ्फुज, तबलीगात, आज जिस तरह से आपके घरों में किताबें आती, इतना के कोई पढ़ता भी नहीं है, बल्कि 5-7 साल बाद सवाल करते हैं लोग कि मौलाना रद्दी का ढेर लग गया, इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें, ये तो सारी मजहबी किताबें। कुरान का तो फिर भी लोग समंदर वगैरह में डाल देते हैं। तो उस वक्त इतनी किताबें लिखी और हर एक को मालूम था कि फ्यूचर ये नायब मोहम्मद इब्ने उस्मान इब्ने सईद का आखिरी वक्त करीब आया। अब ये खुद अपने आप को इतना बड़ा आलिम समझते हैं अबू जाफर के, अपने घर में बैठे। इनके बाद नंबर टू अबू सहल थे नौबख्ती, वो मोहम्मद इब्ने उस्मान के सरहाने बैठे। देखा कि आंखें बंद है, सकरात जैसी कैफियत है। और जो तीसरे आलिम जिनको आम आदमी जानते भी नहीं, वो पाइती बैठे हुसैन इब्ने रौह। दूसरे नायब ने आंखें खोली, सकरात आंखें बंद आंखें खोली, और उसके बाद कहा कि अभी अभी इमाम का हुक्म मुझे मिला। बिल्कुल ऐसे ही वाकया चौथे नायब के वक्त में भी पेश आया था, याद होगा आपको। अलबत्ता वहां यह था कि इमाम का हुक्म मिला कि अब पांचवा कोई नायब नहीं है, अब तमाम मुज्तहिदीन हमारे नायब हैं। मुख्तसर करके इमाम के फरमान को मैंने अपने अल्फाज में पेश किया, मगर दूसरे इमाम के जमाने में यह नहीं था। काबी अभी इमाम का हुक्म आया और मुझसे कहा कि हुसैन इब्ने रौह को अपने बाद नायब बनाओ। अब पता नहीं टोरंटो में यह रवाज है कि नहीं, लेकिन कराची में आज तक नेटी जेटी पर हम हुसैन इब्ने रौह का नाम लेकर ही अरीजा में समंदर के हवाले करते, लहरों के हवाले करते। और जिन्हें अरीजे की पूरी फिलॉसफी और हिस्ट्री पता है, वो खाली 15 शाबान को अरीजा नहीं डालते, हर मुश्किल मौके पे अरीजा डालते। खैर, बात कहीं से कहीं ना चली जाए, गर्चे हुकूमत इमाम में ये चीजें भी आएंगी, लेकिन बाद में आके गोली कहा, मुझे अभी अभी इमाम का ही हुक्म आया। जैसे ये सुना, अबू साले नौबख्ती अपनी जगह से खड़े हुए पहुंची गए। हुसैन इब्ने रौ के कंधे को पकड़ा, उन्हें लाके सरहाने बिठाया कि अब ये आपकी जगह, और खुद जाके पहुंची बैठ गए। बाद में लोगों ने कहा कि जरा सा आपके साथ ये नाइंसाफी नहीं हुई कि आप इतने बड़े आलिम और आपके होते हुए हुसैन इब्ने रौ, जिसे कोई जानता भी नहीं है। कहा, खबरदार, मेरा काम है इमाम के हुक्म को मानना, इमाम के हुक्म पे सवाल करना, क्वेश्चनिंग, ये मेरा काम नहीं है। मैं इमाम का फॉलोवर, शिया, चाहने वाला, ताबे हूं। मौला ने फरियाद की नहजुल बलागा में, और अजीब फरियाद की है, याद रखो मुआविया बातिल पर है मगर जीत जाएगा, बातिल जीत जाएगा, और मैं हक पर हूं मगर जाहिरी एतबार से लोग ये महसूस करेंगे मुझे शिकस्त होगी। हक और वो बातिल जीत जाएगा। वजह भी मौला ने उसी खुतबे में हाथ के हाथ बता दी, खुतबा नंबर 24। अलबत्ता कुरान की आयतें हों या नहजुल बलागा के खुतबात, नंबरिंग में चूंकि इख्तिलाफ है, प्लस वन माइनस वन का ख्याल रखा करें। खैर, और वजह यह बताई कि मैं हक पर हूं मगर मेरे मानने वाले मेरी हर बात मानने को तैयार नहीं, और वो मुआविया बातिल पर है मगर उसके मानने वाले आंखें बंद करके उसकी हर बात को मान रहे हैं। जहां आंखें बंद करके अपने लीडर की बात मानी जाती, दुनियावी एतबार से वो कामयाब नजर आता है। अब आखिरत का फैसला तो बहरहाल हर एक को पता है कि क्या, लेकिन हुसैन इब्ने रौ के वाकये में अबू सहल ने कहा, मैं इमाम का शिया हूं, गुलाम हूं, मेरा काम है इमाम के हुक्म पे अमल करना, क्वेश्चनिंग मेरा काम नहीं। और ये खाली इमाम से मतलब यहां क्या, पूरा इस्लाम। चार शादी की इजाजत क्यों है, औरत को आधा हिस्सा क्यों मिलता है, गवाही आधी क्यों है, ये हुक्म क्यों है, वो हुक्म क्यों, आएंगी बातें, आएंगी आएंगी, अभी बहुत वक्त है इंशाल्लाह। अगर मेरी जिंदगी रही, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मौजूद के लिए वक्त है। ये जैसे ही हुक्म इमाम आया, आंखें बंद करके ये भी नहीं कहा कि है मोहम्मद इब्ने उस्मान इब्ने सईद, हमें क्या बताइए, इमाम का हुक्म है कि तुमने अपनी तरफ से कह दिया। आजकल मराजे के फतवे पे लोग यही एतराज करते, जो फतवा अपने आप को पसंद ना आया। खैर, अब ये रुक जाए, हम बात को पूरा करें। और वो जो तीसरा आलिम है जिसकी वाकान सर्विसेज हैं, हुसैन इब्ने रौ ने एक किताब भी नहीं लिखी, हुसैन इब्ने रौ की कोई स्पीच हमें नहीं मिलती, और जिसने इतनी खिदमत की, जब उसको पता चला कि इमाम ने मुझे छोड़ के इसको बना लिया, वो इमाम ही के अगेंस्ट हो गया। आप में से कई लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली, मुझे चेहरे भी नजर आ रहे हैं, मैं इशारा नहीं करना चाहता, जिनका ये कहना है, इनमें कुछ लोग हैदराबाद दक्कन के भी, जिनका ये कहना है कि बचपने में जिसने हमें तकलीद सिखाई और ये बताया कि तकलीद वाजिब है, मर्जी की तकलीद करो, आज वही बाद में आगे चलकर वही सबसे बड़ा जिद्द मर्जी और जिद्द तकलीद और एंटी तकलीद, एंटी तकलीद बना। और मैं और भी लोगों को जानता हूं, आज जैसा कि मैंने कहा कि आज भी हालत ही है कि ऐसा शख्स इस वक्त भी जितनी किताबें लिखी और जितनी किताबें छापी, आज इतना ज्यादा शियत के अगेंस्ट वही आदमी हो गया है, लेकिन ये पर्सनालिटी की तरफ चली जाएगी मजलिस, तारीख में गुजर चुका। अबू जाफर ने कहा, हक मेरा था, मुझे मेरा हक नहीं दिया गया, जो हक न दे वो इमाम नहीं हो सकता। अब वो जो सारी जिंदगी इमामत की तबलीग करता रहा, आखिरी किताब उसने इमामत के खिलाफ लिख दी, कोई इमाम नहीं, 11वें इमाम लावला दुनिया से गए। अब फिर प्रॉब्लम पैदा हो गई, भाई आजकल तो बहुत आसान प्रिंटिंग, और ये तो प्रिंटिंग तो मेरी एज की बात है, बच्चे, इंटरनेट, ऑनलाइन हर किताब मौजूद, उस वक्त तो किताबें बहुत कम थी। कहा, मौला जो अब इसकी किताबें पुरानी वाली उनका क्या करें, बहुत अच्छी किताबें, इमामत को साबित किया, अकायद को साबित किया, बहुत अच्छी हिस्ट्री लिखी है। इमाम ने कहा पुरानी किताबों को बाकी रखो, इसके बाद से इमाम ने एक डेडलाइन बताई, इसके बाद से इसकी ना कोई किताब पढ़ना है ना कोई तकरीर सुनना। अल्फाज मेरे हैं लेकिन चूंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं बराह रास्त अपने अल्फाज में रिवायत पेश करता हूँ। यह आखिरी इमाम की गैबत के आगाज में ये बात हुई। या आप एक जुमला ऐसा कह दूं जो मेरे आज के मौजू से हटकर है लेकिन बाद नौजवानों की दिलचस्पी का, और वो ये कि उलमा में से कुछ का ये कहना, जैसे मरहूम आगा बहजत, कि जिस तरह इमाम की गैबत के शुरू का एक अरसा था गैबत सुगरा, जिसके ये वाकयात मैंने पढ़े, और फिर गैबत कुबरा, इमाम का जहूर भी इसी तरह होगा, पहले जहूर असगर होगा फिर जहूर अकबर, और आज का जमाना बकौल उन उलमा के जहूर असगर का जमाना है, जहूर शुरू हो चुका। बात इससे ज्यादा इस वक्त नहीं कहना है, वक्त की कमी की वजह से बात गलत हो जाएगी, इस पर मैं आइंदा एक मजलिस में बात करूंगा। लेकिन गैबत सुगरा का वाकया जहूर असगर के अंदर आपको याद दिला रहा हूं। आंखें बंद करके इमाम का हुक्म मानना, यह हुआ आखिरी मासूम। अब आइए पहला मासूम। अधर्मियान में मौला का तो एक ऐसा वाकया आता है, एक तो बहुत मशहूर। आप खुद बताइए अपनी कौम के मिजाज को देखते हुए, खास मैं आपकी बात नहीं कर रहा लेकिन जो आप इस वक्त पूरी दुनिया में कौम का वो मिजाज देख रहे हैं, जहां उन बातों पर उलमा मुज्तहिदीन मराजे और हौज़ा इल्मिया की तौहीन की जा रही, उन बातों पर जो हमने खुद ही अपना एक अकीदा बना लिया और फिर जो उससे टकरा रही है बात, उसको जहन में रखते हुए अगर आप सिफीन की लड़ाई में होते और आपकी तलवार मुआविया के खेमे की रस्सियां काट रही होती, बल्कि अगर ये कह दूं कि जो तारीख में है कि तीन रस्सियां थी, दो कट गई थी, तीसरी और आखिरी रस्सी थी, ये कटेगी तो खेमा गिरेगा तो घबरा के मुआविया बाहर आएगा। मैदान जंग की बात हो रही है, मात्र सेकंडों में तलवार चलती है और गर्दन कटती है, बस ये सेकंडों की बात है, मुआविया का खात्मा हो रहा। अगर मुआविया का खात्मा होता है तो आलम इस्लाम बात के कितने प्रॉब्लम से बच जाता। ये जबकि ये बात है उस वक्त तक तो यजीद की वली अहदी का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ था। मालिक अश्तर, अब कितनी देर में एक रस्सी कटेगी और मुआविया की गर्दन कटेगी, मैंने कहा विद इन अ मिनट, और मौला का हुक्म आ गया ए मालिक अश्तर तलवार रोक दो। ये एक अलग बात है कि मौला ने यह हुक्म किस प्रेशर की वजह से दिया, क्योंकि अगर मैं ये जुमला इसी तरह कह के आगे बढ़ जाऊंगा तो वो गलतफहमी होगी कि कोई प्रेशर आया था मौला पर, वो बात का मरहला है कल या परसों की मजलिस। हम और आप होते तो एक जुमला कहते, और हैं हमारे यहां ऐसे अकीदतमंद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं या वो खारी पब्लिक को शो कर रहे हैं, नहीं, वाकान उनका जज्बा ये, मौला अल्लाह अगर हमें जहन्नम में भी जला दे हम जहन्नम में जलने को तैयार है, मुआविया को नहीं छोड़ेंगे, तभी हम रह जाते हैं। वो मालिक अश्तर बन जाते हैं कि मौला ने कहा जो मेरा रुतबा रसूल के पास है वो मालिक अश्तर का रुतबा मेरे पास, इसलिए कि जैसे ये हुक्म आया मालिक अश्तर की तलवार तीसरी रस्सी के करीब पहुंची, रुक गई। मुआविया बचता है बच जाए, लेकिन अली का हुक्म ज्यादा अहम है। लेकिन ये लेकिन अली के एकाद और वाकयात है, मैं आपको पहले मासूम की हुकूमत की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि मजलिस शुरू जहां से हुई थी घड़ी की सुइयां बता रही कि अब ये अख्तिताम का मरहला आ चुका। हज से बात शुरू की थी ना मैंने, अब हज ही के एक वाकये पे बात खत्म कर रहा हूं। जब आप हज पर जाते हैं तो खैर अब ये कनाडा से जाने वालों की तो बहुत सारी मजबूरियां कि इनके पास वक्त ज्यादा नहीं होता और जरा से कुछ इकोनॉमिकल काफिले तलाश किए जाते हैं जिसकी बिना पर वहां पे मक्के और मदीने में हज के अलावा दीगर जियारतों का मौका नहीं मिलता। मदीने में तो फिर भी कुछ जियारतें कर ली जाती है, मक्के में तो इसका भी मौका नहीं होता। लेकिन एक बड़ी तादाद में दुनिया के दीगर मुल्कों से आने वाले मक्के की ज़ियारतों में एक बहुत ही अहम जगह है जोराना, वहां की ज़ियारत को जाते हैं। जोराना वो जगह है कि जहां से रसूलुल्लाह ने अपने उमरे का इहराम पहना। रसूल ने दो ही जगह से इहराम पहना, एक मदीने की मस्जिद शजरा जहां से आप सब पहनते हैं, और एक जोराना। बस बाकी पैगंबर ने बताया है कि इहराम कहां कहां से पहन सकते हो, लेकिन वहां खुद पैगंबर इहराम पहनने के लिए तशरीफ नहीं ले गए, सिर्फ दो ही जगह गए थे, जोराना। जोराना वो जगह जिसे मक्के की जबान में कहा जाता है बड़ा उमरा। पैगंबर ने वहां से इहराम पहना है उमरे का, हज का इहराम, मस्जिद शजरा मदीना, ये उमरा, तो इसको बड़ा उमरा कहते हैं। कि यहां से रसूल ने खाली मसला नहीं बताया, खुद भी अमल किया। अब आप मक्के किसी भी हाजी से पूछिए या उमरा करने वाले से कि तुमने दूसरे उमरे कहां से किए, वो कहेगा हमने मस्जिद आयशा से इहराम पहना। उसको कहा जाता है छोटा उमरा। छोटा इन मानो है कि पैगंबर ने जगह तो बताई, खुद वहां नहीं गए। तो खैर, जोराना की अहमियत तारीख में इसलिए कि यहां पर जंगे हुनैन के बाद बहुत अहम लड़ाई है, जंगे हुनैन गजवा। लकद नसरकुम अल्लाहु फी मवातिन कसीरा व यौम हुनैन, खास नाम लेके कुरान में आया कि हमने तुम्हारी बहुत जगह मदद की, सूरह तौबा, मगर हुनैन का दिन याद रखो, उस दिन तो हमने तुम पर खास अपना तफज्जुल किया। तो खैर, गज़वा हुनैन के हालात बयान करने का ना वक्त है ना जरूरत। यह अलग बात है कि ज़ियारत आशूरा और दुआ नुतबा किस्म की दुआओं में बहुत ज्यादा ये दो जंगों का तस्किरा है, अहकादिल बदरिया वल हुनैनिया। ऐ आका हुसैन, करबला में आपसे बदर का इंतकाम लिया गया और हुनैन का इंतकाम लिया गया। हुनैन है क्या चीज जो इसका इंतकाम लिया गया, वो एक अलग मौजू है। सिर्फ एक जुमले में बात अर्ज कर दूं कि मैदान ओहद में हजरत हमजा की जियारत करने हम जाते हैं। हजरत हमजा की जियारत मक्के मदीने की ओनली जियारत, लफ्ज ओनली पे तवज्जो दीजिएगा, जिसमें लफ्ज लानत आया। बाकी मक्के और मदीने की जितनी जियारतें हमको मिली मासूमीन की तरफ से, कहीं पे लफ्ज लानत नहीं। करबला की हर जियारत में, मासूमीन की हर जियारत में, मक्के मदीने में सिर्फ एक जियारत है, जनाब हुनैन और जनाब हमजा और शुहदाए उहद। तो अब जब जियारत हम पढ़ा रहे थे, ये बात है आज से 15 साल पहले की, जब हालात इतने खराब नहीं थे जितने आज हैं। तो वहां आया सऊदी अरब का जो, जिसको वहां मुतवा कहते हैं, और कहा कि ये आप क्या पढ़ रहे हैं? कहा जियारत पढ़ रहे हैं जो हमारी किताब में, इसमें लिखा है कि आपके कातिलों पे लानत, फतेह मक्का में जब आप भी मानते हैं कि रसूलुल्लाह ने सबको माफ कर दिया। बच्चा बच्चा जानता, कहा जब आप भी जानते हैं कि सबको माफ कर दिया, तो जब रसूलुल्लाह माफ कर रहे हैं तो आप कौन है लानत करने वाले? यह अजीब बात है कि सऊदी अरब का वो मुतवा, वो जो उनकी अमरे बिलमारूफ पुलिस, वो वही दलील दे रहा जो इनकलाब इस्लामी ईरान के बाद बहुत सारे 12 इमामी शियों की दलील थे इमाम खुमैनी के खिलाफ। क्या ये इमाम खुमैनी रोजाना कितने लोगों, कितने जर्नेलों को कत्ल करा रहे हैं? पैगंबर ने तो फतेह मक्का में सबको माफ कर दिया। ये अजीब दलील कि एक तरफ मर्जियत के खिलाफ यही दलील एक 12 इमामी शिया देता, और दूसरी जानब हिंदा और अबू सुफियान के फेवर में यही दलील दुश्मन अहले बैत मैदान ओहद में खड़े होके देता। वही जो मजलिस के बीच में बात आ गई थी ना, नादानी और नासमझी में कभी कभार हम दुश्मन की जबान बोलने लगते। खैर, तो उस वक्त एक जुमला सिर्फ मैंने कहा और बात खत्म हो गई। आज नहीं कह सकता हूं, आज ये जुमले का मतलब सीधा सीधा जेल। उस वक्त मैंने कहा कि अगर मैं आपकी बात मान लूं कि फतेह मक्का में रसूल ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि ये बात मैंने कभी नहीं मानी थी, हत्ता जब अपने मोमिनीन इमाम खुमैनी पे एतराज करते थे तो पूरी एक लिस्ट मैंने तारीख से निकाल के बताई थी कि रसूलुल्लाह ने नाम लेके कहा ये 9 आदमी या 13 आदमी खाने काबा के पर्दे के पीछे अंदर, यानी दीवार और पर्दे के बीच में छुपे हैं, तो वहां भी कत्ल करो। लेकिन मैंने कहा अगर आपकी बात मान भी लूं तब भी फतेह मक्का पे माफ किया ना, हुनैन का गजबा तो फतेह मक्का के बाद हुआ है, उसमें अगर फिर यही हरकत की गई है तो माफी जहां तक चाहिए माफी के बाद वाला अमल है। खैर बहुत लंबी बात हो रही, तो बहुत अहम वो जगह भी है लड़ाई भी, लेकिन पहले मासूम का अमल देखिए और मोमिनीन का एतराज। जब हुनैन की लड़ाई खत्म हुई तो माल गनीमत मिला, किसी भी मोमिन से पूछिए पैगंबर की जिंदगी में सबसे ज्यादा माल गनीमत कब मिला, सब कहेंगे खैबर, और दूसरे नंबर पर सब खामोश रहेंगे यौम हुनैन। इतना माल गनीमत, इतना माल गनीमत। हुनैन की लड़ाई फतेह मक्का के बाद क्यों हुई थी, क्यों हुई थी? फतेह मक्का में कुरैश ने हथियार डाल दी, हुनैन वाले इतने पैसे वाले थे, अब पैसे वाले का जो गुरूर होता है ना, तकबर जो होता है ना, वो अपने आप को खुदा समझते हैं। उन्होंने कहा कुरैशियों ने हमारी नाक कटवा दी, हम मोहम्मद के सामने हथियार नहीं डालेंगे। जब सारा अरब मान चुका है शिकस्त, हुनैन वाले अकड़ गए, पैसा था पैसा। चुनाचे जब शिकस्त हुई तो माल गनीमत। अब पैगंबर ने जहां पे जोराना की मस्जिद है, आप में से जिसने इस सवाब को हासिल किया और वहां से इहराम पहना है, तो जहां पे मस्जिद है ना, वहीं पे पैगंबर ने माल गनीमत जमा किया, क्योंकि उस वक्त वहां पे मस्जिद नहीं थी। और अब माल गनीमत तकसीम करना शुरू किया, और किया क्या, जो लोग बद्र में पैगंबर के साथ थे उन्हें पैगंबर ने 50 ऊंट दी, जो ओहद में पैगंबर के साथ थे, जो खंदक में, खैबर में, हिजरत के मौके पर, मदीने में, सबको पैगंबर देते जा रहे, और जो फतेह मक्का के बाद आए अबू सुफियान और मुआविया, उनको डबल 100-100 ऊंट तकसीम किए। और ये दो नाम तो मैंने इसलिए लिए कि आप जानते हैं, वरना इसी कैटेगरी के और बहुत सारे काफिर थे जो मक्के वाले थे, इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे, वलीद और उतबा और शैबा, ये तो नहीं, ये तो बदर में मारे गए, मगर इस टाइप के सबको पैगंबर डबल दे रहे हैं। और जिन्होंने हिजरत के दिन से लेकर फतेह मक्का तक पैगंबर के पसीने की जगह खून बहाया, खास तौर पर मदीने के वो लोग जिनके बेटे पैगंबर की मदद करते हुए मारे गए, पैगंबर ने सबको आधा 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 माल गनीमत दी। अब एक बार मदीने के नौजवानों के दिल में शक पैदा हुआ, बूढ़े लोग तो फिर भी खामोश रहे, जवान आपस में एक दूसरे से बातें शुरू हुई। उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, वरना ये व्हाट्सएप, ये ट्विटर और ये सब शुरू हो जाता, ये तो पैगंबर ने आज सरियन ज्यादती की। जब पैगंबर जाहिरी एतबार से कमजोर थे, कोई साथ नहीं दे रहा था, हमने पनाह दी, हमने अपना खून दिया, हमने अपना आधा माल उस वक्त मुसलमान, आम मुसलमानों को दिया, पैगंबर को दे तो ठीक है, आम मुसलमानों को मदीने वालों ने आधा आधा माल दिया, हत्ता आधी बीवियां दी, मैंने एक बीवी के दो टुकड़े नहीं किए, लेकिन अगर दो बीवियां थी, एक तुम रखो एक मैं रखूंगा, मशहूर वाकया। और आज जब पैगंबर का अपना पुराना मक्का उनको मिल गया, पुराने दोस्त, पुराने पड़ोसी, पुराने बिजनेस पार्टनर, तो पैगंबर उनकी जानिब मुड़ गए, डबल बराबर भी नहीं दिया, बराबर पर भी एतराज होता, डबल किसको, अबू सुफियान को, मुआविया को, उनकी बात छोड़िए हमको और आपको एतराज हो जाएगा, या रसूलुल्लाह यजीद को डबल हिस्सा मिलेगा, मुआविया को डबल हिस्सा मिलेगा, और सलमान को और अबू जर को और अम्मार को आधा आधा। अब नऊज़ु बिल्लाह, ये मैं मिसाल खाली मिसाल के लिए दे रहा हूं, सिर्फ मिसाल के लिए, लेकिन मिसाल देते हुए भी मेरा दिल डर रहा कि पता चले हबीब इब्ने मज़ाहिर को आधा मिला और हरमुला को और खुली को डबल हिस्सा मिला, सिर्फ बतौर मिसाल कर रहा हूं, लेकिन तकरीबन ऐसा ही वाकया था। मुआविया और हिंदा, हिंदा कौन, जिगर खार, जनाब हमजा का कलेजा चबाने की कोशिश करने वाली, नाक और कान काट के हार पहनने वाली, डबल हिस्सा, कर औरतों का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसका हिस्सा उसके शौहर अबू सुफियान और मुआविया। अब एक बेचैनी तो होगी, हम और आप बेचैन हो जाए, ये क्या कर रहे हैं रसूल। बहुत छोटी सी एक बात अर्ज करूं, वक्त नहीं है, लेकिन वक्त न होने के बावजूद मैंने बहुत वक्त ले लिया आपका। इमाम खुमैनी रहबर आगा खामेनाई मरजेत जहां ने तशय आयतुल्ला सिस्तानी, मुसलसल हो मुसलसल, एक बार दो बार तीन बार की बात नहीं है, मुसलसल इत्तेहाद मिल्लत का पैगाम देते हैं और कहते हैं कि बरादरान अहले सुन्नत, भाई भी नहीं समझो अपना जुज समझो, मुसलसल ही पैगाम आता। जबकि इनमें से जो आम लोग हैं, ना कोई हिंदा है ना कोई मुआविया, हमारी कौम मुतमईन नहीं, इसी बात पर कभी रहबर के खिलाफ यूट्यूब पे क्लिप नजर आएंगी और कभी आयतुल्ला सिस्तानी के खिलाफ, इनको हम अहमियत दें? मां बहन की गालियां लिखी हैं यूट्यूब के उस क्लिप के नीचे कमेंट्स। ये जो शहजादी के घर का दरवाजा जलाया, इन्होंने नहीं जलाया, जिन्होंने जलाया ये लोग उनको मानते हैं, तो इनको भी क्यों कहा जा रहा है कि भाई करार दो? वहां पे जिसने जनाब हमजा कलेजा चबाया, नाक और कान काट के नेकलेस बना के पहना, पैगंबर ने ये नहीं कहा इनको अपना बराबर समझो, डबल हिस्सा दिया? तो हम और आप होते तो हम भी इतने ही बेचैन हो जाते, क्योंकि हम आज वहां नहीं, बहुत दूर, तो हम कहते नहीं भाई हम बेचैन नहीं होते, जो पैगंबर कहते हमें कबूल है, जो आपके जमाने के वाकयात थे क्या उसमें आपको कबूल है? वाकये के लिए कह रहा हूं, कोई और कबूल कबूल की तरफ ना चले जाइए। तो ये जो वाकयात है, फिर पैगंबर ने खुतबा दिया, कहा जाता है कि पैगंबर की जिंदगी के पांच बहुत ही अहम खुतबात हैं, लफ्ज तो अच्छा नहीं है, मास्टर पीस खुतबात, पैगंबर का हर खुतबा मास्टर पीस होता है, मगर उनमें भी पांच, उनमें से एक ये खुतबा जो पैगंबर ने जुराना में गज़वा हुनैन के बाद दिया। मैं तो अपने काफिले को वहां ले जाके पूरा खुतबा तो सुनाने का वक्त नहीं है, चंद जुमले। पैगंबर ने कहा है अंसार मदीना, तुम्हारी कुर्बानियां इन लोगों से ज्यादा, मैं यहां भी तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं, मैं आखिरत में भी तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और याद रखो इनको मैंने ऊंटे दे के रुख्सत कर दिया, तुम जन्नत में मेरे पड़ोसी हो गए। क्या तुम इस बात पर मुतमइन नहीं हो कि दौलत दुनिया लेके मुआविया जा रहा है और अल्लाह का हबीब वो तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे दरमियान मरते दम तक रहूंगा, यहां तक के मरने के बाद मेरी कब्र भी तुम्हारे शहर में बनेगी। लोगों नौजवानों की हालत अपना सर दीवार से टकरा रहे हैं, बेख्तियार रो रहे हैं, हमें माफ कीजिए, लेकिन बात हो रही है इताअत की, कौन बर्दाश्त करे कि हिंदा को डबल हिस्सा मिले और सलमान फारसी को आधा? पैगंबर ने यही किया, अबू सुफियान को डबल हिस्सा मिले, अबू ज़र ग़फ़ारी को आधा, पैगंबर ने यही किया, मगर इताअत, पहली शर्त है इताअत, हुकूमत इमाम के जो कहें आंखें बंद करके माने। और मैंने शुरू में एक लफ्ज कह दिया, उसी पे आज की मजलिस खत्म कर रहा हूं। इताअत का मतलब ये नहीं है कि हुक्म मान लिया, खैर ये तो पहला मरहला, ये भी आपको पासिंग मार्क्स दिलवा देगा, लेकिन असल इताअत है दिल में भी ख्याल पैदा ना हो कि क्यों हो गया। जैसे अबू सहले नौबख्ती ने कहा, मैं इमाम का गुलाम हूं, मेरा काम उनका हुक्म मानना है, उनके हुक्म पे कोई क्वेश्चनिंग ये मेरा काम नहीं, दिल में भी ये ख्याल ना हो, वरना सोची कि हुसैन मदीने से जा रहे हैं, सबको लेके जा रहे हैं, एक बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, बहुत बेचैन, बहुत परेशान। शरण जहां तक बोलने का इख्तियार है, एतराज अलग चीज होती है, तफहीम अलग चीज होती है, एक होता है ऑब्जेक्शन, एक होता है कोई सवाल करना टू अंडरस्टैंड। आदम को अल्लाह ने बनाया, फरिश्तों ने भी सवाल किया, ये एतराज नहीं था, ये वैसा वाय नहीं था कि जैसे हमारे बच्चे कहते हैं कि डिस्को क्यों ना जाएं, हमारी बच्ची कहती है हिजाब क्यों करें, ये समझने के लिए था। तो समझने के लिए कोई बात पूछना अलग चीज है, लेकिन आंखें बंद करके हुक्म मानना। मैं अक्सर ये रिवायत पढ़ता हूं और आज इसी रिवायत पे मजलिस खत्म कर रहा हूं, हुसैन सबको लेके चल रहे हैं, लेकिन अपनी एक बच्ची को मदीना छोड़ के जा रहे हैं। किताब नहजतुल हुसैन के अंदर इख्तिसार के साथ ये वाकया आया, मैं जरा सा अपने अल्फाज के जरिए इसको मुकम्मल कर रहा हूं। और न सिर्फ ये कि छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि हुसैन ये भी नहीं चाहते कि ये बच्ची किसी की सिफारिश लेके आ जाए। चुनाचे जिस वक्त 28 रजब का काफिला मदीने से चल रहा और सवारियां आ गई, बैतुल शरफ महल्ला बनी हाशिम में पहरा लग गया, हुसैन ने कहा बीबियों अब जाओ, सुगरा को भी खुदा हाफिज कह दो, क्योंकि वो यहीं रहेगी। लेकिन देखो जाना और आ जाना, ठहरना नहीं उसके पास, कि ऐसा ना हो नन्नी बच्ची किसी की सिफारिश लेके आ जाए। और सुगरा यही सोचे बैठी थी कि अब ये मेरी बहनें आएंगी, मेरी फुपियां आएंगी, मेरी माँ आएगी, खानदान की बुजुर्ग खवातीन आएंगी, मैं उनसे कहूंगी कि मेरी सिफारिश कर दे। मगर वहां तो हुक्म इमाम था, तो हर बीबी जाती है, सर पे हाथ फेरती है और कहती है सुगरा बेटी खुदा हाफिज कह के बाहर आ जाती। इससे पहले कि सुगरा अपनी बात शुरू करें, वो बीवी अलविदा कह के बाहर आ चुकी। और सुगरा दिल में सोच भी रही कि आखिर बाबा सबको ले जा रहा है, मुझे क्यों नहीं ले जा रहा। और हम भी सोचे, दो तीन चीजें जहन में आती हैं कि शायद इसलिए नहीं ले गई कि सुगरा बीमार थी। मगर जब एक बीमार इमाम सज्जाद करबला के सारे मराहिल से गुजर सकता, तो सुगरा सज्जाद से ज्यादा बीमार तो नहीं थी। कभी दिल में ख्याल आता है कि बड़ा मुश्किल सफर है, और इतने मुश्किल सफर में लड़कियों का ले जाना मुनासिब नहीं है। मगर जब हुसैन की दूसरी बेटियां कुबरा जा रही है, सकीना जा रही है, जब दूसरी लड़कियां जा सकती हैं, तो फिर सुगरा भी जा सकती। कभी दिल में ख्याल आता है शायद सुगरा बहुत कमसिन, मगर जब दो हफ्ते का नन्ना अली असगर जा सकता है, तो सुगरा अली असगर से ज्यादा कमसिन तो नहीं। ना हमारी समझ में आ रहा, ना सुगरा की समझ में आ रहा। बाबा का हुक्म आ चुका है, बाबा के सामने बोलना नहीं चाहती। अब ये सोच रही कि सिफारिश, एक एक करके सारी बीबियां जल्दी से निकल गई। लेकिन जब आखिर में सुगरा ने देखा कि मेरे हुजरे में सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा वारिस अली और फातिमा दाखिल हूं, सुगरा को मालूम था अगर फूफी अम्मा भी चली गई तो फिर और तो कोई नहीं है मेरी सिफारिश करने वाला। चुनाच अभी ज़ैनब ने आकर सर पर हाथ ही रखा था कि सुगरा ने तड़प के फूफी का दामन थाम लिया। कहा फूफी अम्मा, बाबा से इतना कह दीजिए कि मुझे भी अपने साथ लेके जाए। ज़ैनब शरीकतुल हुसैन, जो हुसैन हुक्म देंगे ज़ैनब उस हुक्म पे अमल करवाएंगी, शरीकतुल हुसैन। चुनाचे कहा सुगरा बेटी घबराओ नहीं, चंद दिनों की बात है, जा रहे हैं वापिस आएंगे। अब नन्नी बच्ची इस वक्त इतना परेशान है कि तड़प के वो जुमला कह दिया जो आमतौर पर बच्चियां नहीं कहती। घबरा के कहा फूफी अम्मा, मुझे पता है कि आप तो वापिस आएंगी, मैं अपने बाबा के लिए कह रही। ज़ैनब ने चौंक के कहा सुगरा बेटी ये क्या कह दिया। कहा फूफी अम्मा, कल रात को मेरी आंख खुल गई, मेरा दिल घबरा रहा था, सारे घर वाले सो रहे थे, मैं अपने हुजरे से मकान के सहन में गई तो मैंने देखा सहन की पिछली दीवार के साथ कोई सियापोश और नकाबपोश बीबी बैठी हैं और बार बार कह रही हैं हाय मेरा लाल, हाय मेरा हुसैन। मैं समझ गई ये मेरी दादी फातिमा जहरा है जो मेरे बाबा का मातम कर रही है। माँ का नाम सुनना था, ज़ैनब भी तड़प उठी, सुगरा को लेकर चली, हुसैन के हुजरे में दाखिल हुई। हुसैन इमाम वक्त है, हुसैन इमाम जमाना है। देखा ज़ैनब सुगरा को लेके आ रही, हुसैन समझ गए। कहा ज़ैनब, भाई तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, मगर सुगरा की सिफारिश ना करना। ज़ैनब ने तड़प के कहा, लेकिन भैया क्यों, सुगरा की सिफारिश क्यों नहीं। हुसैन ने कहा ज़ैनब बहन, तुझे पता है करबला के बाद क्या होने वाला, ये कूफा और शाम के बाजार और दरबार का जिहाद तो ज़ैनब ही को करना। तुझे पता है करबला के बाद क्या होने वाला है। मैं अपनी हर बेटी को बेमकना और चादर बलवाए आप में देख सकता हूँ, लेकिन अपनी सुगरा को बगैर चादर के नामहरमों के बीच में नहीं देख सकता। और आका क्यों, आखिर किस लिए। आका कहेंगे इसलिए कि मेरी बाकी बेटियां या मेरे नाना की छबी है या मेरे बाबा की तस्वीर है, लेकिन मेरी सुगरा मेरी माँ फातिमा ज़हरा की शबी है। आखिर हुसैन फातिमा की शबी, बेमकना चादर ना महरमों के दरमियान कैसे। अला वलानतुल्लाहि अला आदाइहि मजमईन। परवरदिगारा माह मुहर्रम की इस पहली तारीख हुसैन के आजादारों के इस गिरिये का वास्ता, गमे हुसैन के अलावा इन सबको दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगार 28 रजब को मदीने से निकलने वाले उस हुसैनी काफिले का वास्ता जो ऐसा उजड़ा कि कयाम कयामत तक दोबारा आबाद ना हो सका, इन मोमिनीन को जो आज की मजलिस में हैं, इन मोमिनात को जो आज की सफेदा पे बैठी हैं, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी रोजी के जराए को, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। और दुनिया में आज भी जहां मजलूम शियान हैदर कर्रार हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो बहरेन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो नाइजीरिया हो, चाहे वो दुनिया में जहां जहां मजलूम شیان حیدر کرار اور مستضعفین جہاں ہیں، خداوندہ ان سب کی جان مال عزت اور اولاد کی حفاظت فرما، جن مرحومین کے لیے آج ایصال ثواب ہوا ان سمیت ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، پروردگارہ جنہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے ان کی اس پریشانی کو بے حق مصائب کربلا دور فرما، اور اسلام کی پریشانی کے ہمیشہ ہمیشہ اختتام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔